पंचदशी के नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। ध्यानदीप नामक इस प्रकरण के 59वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 60वें श्लोक का विचार प्रारंभ होना है। 60वें श्लोक का अवतरण रूप जो टीका है इसे देखिए। 59वें श्लोक में ये शंका हुई कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना का श्रुति निषेध कर रही है, और आप यदि कहोगे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना हो सकती है तो आपका कथन श्रुति विरुद्ध होने से वैदिकों के लिए अनुपादेय होगा। कोई वैदिक आपके कहने से निर्गुण ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि वेद निर्गुण ब्रह्म को उपास्य नहीं है करके कह रहा है। ये 59वें श्लोक में कहा गया, इसका समाधान किया जा रहा है विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा। सिद्धांती हैं विद्यारण्य स्वामी जी ग्रंथकार। तो 60वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। पूर्वार्ध का अवतरण है, उपास्यत्ववत् वेद्यत्वस्यापि तन्निषेधः समान इत्याह। कहते खाली ब्रह्म में वेद उपास्यत्व का ही निषेध नहीं करता, वेद्यत्व का भी निषेध करता है। इसलिए ब्रह्म के उपास्यत्व का वेद ने निषेध किया है, इसलिए ब्रह्म को उपास्य न माना जाए, ऐसा यदि कहोगे तो फिर ब्रह्म के तो वेद्यत्व का भी निषेध वेद कर रहा है, तो वेद्य भी मत मानो फिर। वेद्य यानी ज्ञेय, ब्रह्म को मत मानो, ये मानने की आपत्ति आएगी। लेकिन ब्रह्म को वेद्य मानते होगी नहीं, तो ब्रह्म यदि वेद्य है तो जो ब्रह्म को वेद्य मान रहे हैं उनके पक्ष में भी श्रुति विरोध उपस्थित हो रहा है। ब्रह्म को उपास्य मानने वालों के पक्ष में श्रुति विरोध जो दोष दिया जा रहा है वह ब्रह्म को वेद्य मानने वालों के पक्ष में भी समान है, ये विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं। तो जो दोष अपने पक्ष में भी आ रहा हो वह केवल दूसरे के पक्ष में नहीं बताया जा सकता। ब्रह्म को उपास्य मानने वालों के पक्ष में मात्र श्रुति विरोध नामक दोष नहीं बताया जा सकता, ब्रह्म को वेद्य मानने वाले पक्ष में भी वो समान होने से। ये कह रहे हैं कि उपास्यत्ववत् वेद्यत्वस्यापि तन्निषेध। तन्निषेध में तत् से वेद को लीजिए, वेदेन निषेध। तो जैसे वेद से ब्रह्म के उपास्यत्व का निषेध हुआ, ऐसे वेद से ब्रह्म के वेद्यत्व का भी निषेध हो जाता है। तो तन्निषेध समान, तो एक वेद विरोध नाम का दोष दोनों पक्ष में एक जैसा हुआ, ये कहा जा रहा है 60वें श्लोक के पूर्वार्ध में। तो 60वें श्लोक का उच्चारण कर लें। विदितादन्य देवेति श्रुतेर्वेद्यत्वमस्य न यथा श्रुत्यैव वेद्यञ्चेत् तथा श्रुत्याप्युपास्यताम्। तो ये कहते हैं विदितात अन्यद एव इति श्रुते अस्य वेद्यत्वं न। अस्य अने ब्रह्मण अस्य इदम शब्द का षष्ठी का एक वचन है ना, वो अस्य शब्द यहां पर ब्रह्म को बता रहा है। तो अस्य का अर्थ निकलेगा ब्रह्मण वेद्यत्वम न, ब्रह्म में वेद्यत्व भी संभव नहीं होगा यदि उपासकत्व तो नहीं है तो। क्यों ब्रह्म में उपासकत्व तो आप कहते हो वेद निषेध कर रहा है इसलिए नहीं होगा। तो वेद्यत्व का भी तो निषेध ब्रह्म के वेद कर रहा है, इसलिए वेद्यत्व भी ब्रह्म में मत मानो, ये कहने की आपत्ति आएगी। कहा कौन सी श्रुति है जो ब्रह्म में वेद्यत्व का निषेध करती है? तो केनोपनिषद में आया हुआ जो वाक्य है अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये जो वाक्य है ये उसका शुरू वाला जो अंश है विदितात अन्यत, विदित कहते हैं ज्ञान के विषय को ज्ञात को, और उससे ब्रह्म अलग है ये श्रुति कह रही है, का मतलब वेद्य नहीं है। तो विदितात अन्यद एव इति श्रुते, इस श्रुति से अस्य यानि ब्रह्मण वेद्यत्वम न यानि निषिध्यते, वेद्यत्व का निषेध किया जा रहा है, ब्रह्म में वेद्यत्व का अभाव ये श्रुति बता रही है। और तब भी आप ब्रह्म को वेद्य मानोगे तो फिर आपके मत में भी श्रुति विरोध होगा। जैसे ब्रह्म को उपास्य हम मान रहे हैं तो हमारे मत में श्रुति विरोध नाम का दोष बता रहे हो, वो तो आपके मत में भी आ रहा है। तो जिसके घर शीशे के हुआ करते हैं वे दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते नहीं फेंकते, क्योंकि वो भी एक आध पत्थर फेंकेगा आपके घर पर तो टूट जाएगा। ये या एक प्रकार से पूर्वार्ध में कहा गया। तो उत्तरार्ध में यदि ये कहते हैं पूर्व पक्षी की एक अवान्तर शंका होगी जो टीका में बताई जाएगी अवतरण में, और उस शंका का समाधान करने के लिए उत्तरार्ध है। पूर्व पक्षी यदि ये कहते हैं कि अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये जो श्रुति है यह ब्रह्म में वेद्यत्व का निषेध नहीं करती अपितु ये बताती है कि ब्रह्म विदित अविदित से अतिरिक्त है अन्य है, वह विदित भी नहीं है अविदित भी नहीं है, ये विदित अविदित से अन्य ब्रह्म को बताना श्रुति का विषय है अभिप्राय है, न कि वेद्यत्व का निषेध। नहीं क्यों जाना है पीछे, बाकी सबको बैठ गया आपको क्यों नहीं बैठ रहा है? बाकी को तो बैठ गया, वो शुरू में मैंने बता दिया है उसको कि पहले जब प्रस्तावना में बता दिया कि पूर्व में श्रुति विरोध नामक दोष 59वें श्लोक में बताया गया है, श्रुति का विरोध नामक दोष बताया गया है ब्रह्म को उपास्य मानने वाले पक्ष में, पूर्व पक्ष ने दोष बताया और उसका निराकरण करने के लिए विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म को उपास्य हम मानते हैं तो हमारे मत में श्रुति विरोध दोष तुम दिखा रहे हो, तो तुम भी तो ब्रह्म को वेद्य मानते हो और श्रुति ब्रह्म को वेद्य नहीं है करके कह रही है, तो श्रुति का विरोध तुम्हारे मत में भी आ रहा है, इसलिए दोनों के मत में श्रुति विरोध नामक दोष समान है, दोनों के मकान शीशे के हैं, तो क्यों एक दूसरे के मकान पर पत्थर फेंके, दोनों अपने अपने मकान बचाए रखें, ये एक प्रकार से समाधान दिया। अब पूर्व पक्षी जो ब्रह्म को उपास्य नहीं मानना चाहते, वेद्य तो मानना चाहते हैं, वे यदि ये कहते हैं जिस श्रुति का विरोध उनके मत में दिखाया जा रहा है उस श्रुति का अर्थ ब्रह्म में वेद्यत्व का निषेध करना नहीं अभिप्राय उस श्रुति का, उस श्रुति का तात्पर्य ब्रह्म को विदित अविदित से अलग दिखाना है, इसमें श्रुति का तात्पर्य है। ब्रह्म विदित अविदित अतिरिक्तत्वेन रूपेण जानने योग्य है, वेद्य है, ऐसा श्रुति का अभिप्राय है। ये यदि ब्रह्म को वेद्य मानने वाले कहना चाहेंगे तो उत्तरार्ध में सिद्धांती कहते हैं कि यथा श्रुत्यैव वेद्यं चेत, यथा श्रुति का मतलब अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि, ये श्रुति ब्रह्म को विदित अविदित अतिरिक्तत्वेन रूपेण वेद्य बता रही है, कार्य कारण से रहित, कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित निर्विशेष रूप से वेद्य बता रही है, वेद्य बता रही है। ऐसा यदि आप कहते हो तब तो इस श्रुति के आधार पर अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि, इस श्रुति से ब्रह्म निर्विशेष है, विदितत्व तथा अविदितत्व रूप विशेष से रहित ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, उस वृत्ति का विषय वो बनेगा, तो फिर उसी प्रकार से विदित अविदित अतिरिक्तत्वेन रूपेण निर्विशेष रूप से ब्रह्म की वृत्ति का आवर्तन रूप उपासना भी मान लो, जिस रूप से वो वेद्य है उसी रूप से उस वृत्ति का आवर्तन रूप उपासना भी मान लो, उसे उपास्य मान लो। ये कह रहे हैं कि यथा श्रुत्यैव वेद्यं चेत तथा श्रुत्यापि उपास्यताम्, तो कहते वैसा ही फिर जैसा श्रुति से वह वृत्त्यात्मक ज्ञान होगा, वृत्ति का विषय बनेगा, तो उसी आकार की वृत्तियों का आवर्तन रूप उपासना का भी विषय वो बन जाएगा, तो उपास्यत्व भी आ जाएगा उसमें, वेद्यत्व मानोगे तो उपास्यत्व भी साथ साथ आ जाएगा। तो तथा श्रुत्या उपास्यताम ये कहा गया। थोड़ी टीका है, पहले पूर्वार्ध का अर्थ करते हैं टीकाकार, उसे देखिए। अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति ब्रह्मणो वेद्यत्वम् अपि निवारयति इत्यर्थ, ये पूर्वार्ध का अर्थ हुआ कि ये श्रुति अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि केनोपनिषद की श्रुति है, केनोपनिषद वाक्य है, ये क्या कह रहा है कि ब्रह्म में वेद्यत्व भी नहीं है ऐसा बता रहा है, ये केनोपनिषद वाक्य वेद्यत्व का निषेध कर रहा है, निराकरण कर रहा है। विदितात यानी ज्ञातात इत्यर्थ, और अविदितात का अर्थ है अज्ञातात इत्यर्थ, तो ज्ञात तथा अज्ञात से अतिरिक्त ब्रह्म है। आगे यथा इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। हाँ, और विदित यानी कार्य। अब टीकाकार यथा इत्यादि उत्तरार्ध का अवतरण लिख रहे हैं कि विदिता विदिताभ्याम अन्यत् ब्रह्म इति श्रुति ही प्रतिपादयति इति चेत तर्हि तथैव तज्जानीयात् इति आशंक्य उपासनेपि एतत् समानम् इत्याह यथेति। कहते हैं अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि यह श्रुति वाक्य ब्रह्म को वेद्य नहीं है ऐसा नहीं बता रहा, अपितु ये कह रहा है कि ब्रह्म को विदित अविदित से अतिरिक्त समझना चाहिए। विदितत्व रूप विशेष यानी कार्यत्व रूप विशेष, अविदितत्व रूप विशेष यानी कारणत्व रूप विशेष से रहित निर्विशेष रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है वाक्य। ये नहीं कह रहा है कि वो वेद्य नहीं है, वो निर्विशेष रूप से जानने योग्य है, कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से युक्ततया जानने योग्य नहीं है, अपितु निर्विशेष रूप से जानने योग्य है। यह अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इस वाक्य का अभिप्राय है। ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो सिद्धांति कहते हैं तरही, तब तो कहते हैं कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित निर्विशेष रूप से ही ब्रह्म को जान लो, यानी वृत्ति का विषय बना लो, इस रूप से वो वृत्ति का विषय बनेगा निर्विशेष रूप से। हाँ, और वृत्ति का विषय यदि बन गया तो उसी वृत्ति का आवर्तन होगा, निर्विशेष ब्रह्म है इत्याकारक जो वृत्ति बनेगी उसकी आवृत्ति उसका पुनरावर्तन ये उपासना कहलाती है, तो उस रूप से उस वो उपास्य भी बनेगा। तो उपासनेपि एतत् समानम्, तो उपासना भी बन जाएगी, इसे यथा श्रुत्येव वेद्यं चेत् तथा श्रुत्यापि उपास्यताम् इससे कहा गया। आगे कहते हैं ब्रह्म में अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इत्यादि श्रुति ने जो निर्विशेष रूप से जान्य योग्य है करके कहा, वेद्य कहा, वह वेद्यत्व पारमार्थिक नहीं है, कल्पित है। वेद्यत्व रूप विशेषता श्रुति आरोपित कर रही है, वेद्यत्व आरोपित बता रही है, नहीं तो वो तो स्वयं वेदन है, वेद्य नहीं है। हाँ। और उसमें वेद्यत्व का प्रयोजक वृत्ति व्याप्ति है, ऐसा यदि कहते हैं तो कहते फिर उसी जिस वृत्ति की व्याप्ति यानी विषयता ब्रह्म में मान रहे हो उस वृत्ति का आवर्तन रूप उपासना भी बन जाएगी। तो ये 61वें श्लोक का अवतरण देखिए टीका में, ननु वेद्यत्वं ब्रह्मणो वास्तवम् न भवति। ननु यानी शंका है क्या कि ब्रह्मणो वेद्यत्वं वास्तवम् न भवति, तो ब्रह्म में वेद्यत्व रूप विशेषता वास्तविक नहीं है। वेद्यत्व रूप विशेषता को वास्तविक मानेंगे तो फिर वो निर्विशेष नहीं होगा, वेद्यत्व रूप वास्तविक विशेषता वाला हो जाएगा ना, तो सविशेष सिद्ध हो जाएगा, निर्विशेषता उसकी नहीं रहेगी। इसलिए ब्रह्म को निर्विशेष बनाए रखने के लिए उसमें जो वेद्यत्व बताया गया वह कल्पित है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार की शंका यदि सगुण की ही उपासना होती है निर्गुण की नहीं ऐसा कहने वाले करते हैं, तो कहते हैं फिर हम उपास्यत्व तो कौन सा पारमार्थिक है करके कह रहे हैं सिद्धांती। कहते जैसा वेद्यत्व कल्पित है ऐसा ब्रह्म में उपास्यत्व विशेष भी कल्पित है और वो स्वतः निर्विशेष ही है, निर्विशेषता बनी रहेगी। ये इस प्रकार कहते हैं कि उपास्यत्वम अपि तथा वेद्यत्व जैसा है क कैसा है वेद्यत्व, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, कल्पित है, तो फिर उपास्यत्व भी ब्रह्म का कल्पित ही है। कल्पित उपास्यत्व को लेकर के उपासना बन सकती है, जैसे वेद्यत्व कल्पित है। इस अभिप्राय से 61वां श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण कर लें। अवास्तवी वेद्यता चेत उपास्यत्वं तथा न किम् वृत्तिव्याप्तिर्वेद्यता चेत उपास्यत्वेपि तत्समम्। वेद्यता अवास्तवी चेत, तो चेत यानी यदि ब्रह्म में जो अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधिश्रुति ने कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित निर्विशेष रूप से वेद्यता बताई है, वह अवास्तविकी है, कल्पित है, ऐसा यदि कहते हैं तो कहते उपास्यत्वम तथा न किम, किम शब्दाक्षेप अर्थ में, तो फिर वेद्यत्व के तरह उपास्यता भी कल्पित क्यों नहीं हो सकती, अवास्तविक क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। तो कल्पित वेद्यत्व को लेकर के वृत्ति का विषय निर्विशेष ब्रह्म बनता है, तो कल्पित उपास्यत्व को लेकर के उपासना भी उसकी बन सकती है निर्विशेष की, ये यहां पर कहते हैं। आगे एक शंका करते हैं, उसका उत्तर देने के लिए उत्तरार्ध है, वो शंका लिखी जा रही है टीका में उत्तरार्ध के अवतरण के रूप में, उसे देखिए। अवास्तवी इति इस प्रतीक के बाद में जो ननु इत्यादि आया ना टीका में वाक्य, वो है उत्तरार्ध का अवतरण 61वें श्लोक के। पूर्वार्ध का अवतरण हो गया 61वें श्लोक के पूर्व में जो टीका थी ननु इत्यादि वाक्य, वो 61वें श्लोक के पूर्वार्ध का अवतरण है, और उत्तरार्ध कहा जाता है दूसरी जो लाइन है उसे, उसका अवतरण ये टीका में लिखा जा रहा है। ननु वेदन पक्षे वृत्तेर ब्रह्माकारत्वम अस्ति, नोपासने इति आशंक्य शब्दबला तदाकारत्वम उभयत्र समानम इत्याह वृत्ति इति। यदि सगुण की उपासना मानने वाले ये कहते हैं कि वेदन पक्षे वृत्तेर ब्रह्माकारत्वम अस्ति, ब्रह्म को वेद्य मानते हैं जो, वे ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति स्वीकार करते हैं, वृत्ति व्याप्ति ही, वृत्ति व्याप्ति का अर्थ होता है, व्याप्ति शब्द का अर्थ होता है संबंध, वृत्ति व्याप्ति का अर्थ निकलेगा वृत्ति का संबंध, वृत्ति यानी मन की वृत्ति, चित्त की जो एक वृत्ति बनती है शब्द को सुन करके, शब्द के अर्थाकार जो मन की वृत्ति बनी उसे कहा जाता है एक वृत्ति, और उसका जो अर्थ के साथ संबंध, अपने विषय के साथ संबंध, वो है वृत्ति विषयता, उसी का नाम है वृत्ति व्याप्ति, एक पारिभाषिक शब्द है वृत्ति व्याप्ति, और वृत्ति व्याप्ति इस पारिभाषिक शब्द का अर्थ निकलेगा वृत्ति की विषयता। अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, इस वाक्य से उत्तम अधिकारी के मन में निर्विशेष ब्रह्माकार एक वृत्ति होगी, और उस वृत्ति का विषय निर्विशेष ब्रह्म बनेगा, उसमें एक धर्म रहेगा वृत्ति विषयता, उसी को वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। निर्विशेष ब्रह्म में जो वृत्ति विषयता रूप धर्म रहा वो धर्म है वृत्ति व्याप्ति संबंध, वृत्ति का संबंध वृत्ति व्याप्ति का अर्थ है। तो वेदन पक्षे निर्विशेष ब्रह्म का वेदन यानी ज्ञान होता है, इस पक्ष में उपासना नहीं होती किंतु ज्ञान होता है। इस पक्ष में वो ज्ञान क्या है तो वृत्ति व्याप्ति, ऐसा यदि कहते हैं तो वेदन पक्षे वृत्तेर ब्रह्माकारत्वम अस्ति, यानी वृत्ति में ब्रह्माकारता रहेगी, ऐसा यदि सगुण की ही उपासना मानने वाले और निर्गुण को केवल वेद्य मानने वाले कहते हैं तो कहते नोपासने और उपासना में ये वृत्ति व्याप्ति वृत्ति ब्रह्माकार नहीं बनेगी, ऐसा यदि कहते हैं तो कहते शब्द बला तदाकारत्वम उभयत्र समानम, का वेदन पक्ष में वृत्ति में ब्रह्माकारता क्यों आई, वृत्ति ने ब्रह्म को अपना विषय क्यों बनाया, अर्थात तो ब्रह्म वृत्ति का विषय कैसे क्यों बना, तो कहते इसलिए कि नहीं तो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये जो शब्द प्रमाण है इसमें प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा ना, वो अप्रमाण हो जाएगा। तो शब्द में प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्या सामर्थ्यात, शब्द के सामर्थ्य से वेदन पक्ष में इस शब्द से मन में उत्पन्न हुई वृत्ति का विषय निर्विशेष ब्रह्म बना, नहीं तो वेद वाक्य में अनर्थक्य की आपत्ति आएगी, अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाला जो वेद, वह यदि निर्विशेष ब्रह्म को वृत्ति का विषय नहीं बना पाएगा, निर्विशेष ब्रह्माकार वृत्ति को उत्पन्न नहीं कर पाएगा तो अप्रमाण हो जाएगा। आंख यदि रूप अपने विषय रूप का ज्ञान नहीं कराएगी तो रूप में प्रमाण कैसे माना जाएगा आंख को नेत्र को, तो रूप का ज्ञान करा करके ही चक्षु रूप विषयक प्रमाण कहलाता है। ऐसे निर्विशेष ब्रह्म विषयक प्रमाण कौन है, निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले उपनिषद वाक्य अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि, और वे प्रमाण कब बनेंगे, प्रमाण में प्रामाण्य है प्रमाजनकत्व, और प्रमा का जनक नहीं बनेंगे तो कैसे उनको प्रमाण माना जाएगा। तो मानना पड़ेगा कि निर्विशेष ब्रह्म विषयक वृत्ति निर्विशेष ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों से होती है, नहीं तो उनमें अप्रामाण्य आएगा। तो जैसे निर्विशेष ब्रह्म में निर्विशेष ब्रह्म के प्रतिपादक वाक्यों में प्रामाण्य के लिए निर्विशेष ब्रह्माकार वृत्ति को स्वीकार किया जा रहा है, ऐसे एक बार निर्विशेषाकार वृत्ति बन गई यदि तो उसका आवर्तन करने में क्या आपत्ति है, उसका आवर्तन भी हो सकता है फिर। तो ये उपासना पक्ष में भी उन निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों के द्वारा आवर्तन भी संभव हो जाएगा, वो प्रमाण बन जाएंगे इसमें। ये कहते हैं कि शब्द बलात् तदाकारत्वम, शब्द बलात् यानी श्रुति प्रमाण श्रुति सामर्थ्यात् तदाकारत्वम, इसमें तद शब्द का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म, तो तदाकारत्व का अर्थ निकलेगा निर्विशेष ब्रह्माकारत्व। उभयत्र यानी उपाशत्व पक्ष में भी और वेद्यत्व पक्ष में भी समान है, इति आह इस अभिप्राय से 61वें श्लोक के उत्तरार्ध में विद्यारण्य स्वामी जी ने ये कहा कि वृत्ति व्याप्तिर वेद्यता चेत, वृत्ति व्याप्ति ही वेद्यता है, यानी निर्विशेष ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों से उत्पन्न हुई वृत्ति की विषयता रूप वृत्ति व्याप्ति ही ब्रह्म में वेद्यता है, ऐसा यदि कहते हैं तो कहते हैं कि उपास्यत्वेपि तत्समम, तो ब्रह्म को उपास्य मानेंगे तब भी उपासना भी तो क्या कहा, यानी वेद्य पक्ष में एक बार वृत्ति उत्पन्न हुई और उसका विषय निर्विशेष ब्रह्म बना, एक बार उत्पन्न हुई वृत्ति का विषयत्व आ गया निर्विशेष ब्रह्म में तो वेद्य बनाओ, तो अनेक बार भी तो होने वाली निर्विशेष ब्रह्माकार वृत्ति का विषय वो बन सकता है, वो उपासना कहलाएगी। प्रथम उत्पन्न हुई वृत्ति का विषय बना तो वेद्य हुआ, और उसी वृत्ति का आवर्तन कर रहे हैं तो वृत्ति आवर्तन उपासना है, तो वो उस आवर्त्यमान वृत्ति का विषय ब्रह्म बन जाएगा तो उपास्य कहलाएगा, तो दोनों में भी एक समान ही है, वेद्यत्व है तो उसके साथ साथ उपास्यत्व भी जुड़ा हुआ है, जैसे चित और पट एक सिक्के में दोनों पहलू होते हैं ना, तो खाली चित को ही लेना चाहेंगे पट को छोड़ करके तो ये नहीं छोड़ सकते, खाली वेद्यत्व नहीं माना जा सकता, उपास्यत्व भी साथ में आ ही जाएगा, ये कह रहे हैं। कुछ कह रहे थे सिद्धांत, ये ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म बनता है ये दोनों भी मानते हैं, है ना, और निर्विशेष ब्रह्म उपास्य भी है ये मान रहे हैं सिद्धांति। हाँ ठीक है, वो तो मन का परिणाम है ना वृत्ति, मन का परिणाम होने से मन स्वयं कल्पित है अनात्मा होने से, तो उसका परिणाम भी कल्पित ही होगा, यानी श्रुति वाक्य से उत्पन्न हुई जो वृत्ति है उस वृत्ति को कह रहे हैं कल्पित है, हाँ। और श्रुति स्वयं भी अपने आप को भी कल्पित बता रही है, हाँ? अनुभव भी तो सर्प भी अनुभव से सिद्ध है लेकिन कल्पित है कि नहीं, रस्सी में सर्प का अनुभव हो रहा है तो वो जो रस्सी में होने वाला सर्प का अनुभव उससे सिद्ध सर्प उसको आप कल्पित मानते हैं तो अनुभव सिद्ध श्रुति अर्थ को भी, हाँ। तो ये जो लेकिन एक ब्रह्म को छोड़ करके बाकी सब कल्पित है, इसलिए श्रुति स्वयं अपने आप को कहती है कि मैं भी एक सीमा तक ही प्रमाण हूं, बाकी यत्र वेदा अवेदा भवन्ति, ऐसा एक बृहदारण्यक में वाक्य आता है कि यत्र यानी उस स्वरूप में स्थित होने पर ब्रह्म अद्वैत में, फिर वेद भी अवेद है वो कल्पित है, तो श्रुति ये नहीं कि अपने को बचा करके बाकी सब को मिथ्या बताती है, वो कहती है एक सीमा के बाद मैं भी कल्पित हूं, मेरे से उत्पन्न हुआ जो अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कारात्मक ज्ञान था वो भी कल्पित है, क्योंकि वाचारंभनम विकार, जो विकार कहते हैं कार्य को, वो कार्य मात्र कैसा है वाचारंभन है, वाचारंभन का अर्थ होता है मिथ्या, तो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि यह जो वृत्ति है यह वृत्ति कार्य है कि नहीं, तत्वमसी प्रमाण से उत्पन्न हुई है का मतलब कार्य है, और जो भी कार्य है उसे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया वाचारंभन, वाचारंभन यानी मिथ्या कल्पित, तो ये वृत्ति भी कल्पित हुई और वृत्ति का उत्पादक शब्द भी वो भी कल्पित है और उस वृत्ति का विषय जो ब्रह्म है वो अकल्पित है। तो वृत्ति को प्रमा क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसका विषय ब्रह्म उस वो बाधित नहीं होता, वो कल्पित नहीं है, वो सत्य है, उसका बाधक कोई नहीं है। बाकी सब प्रमाणों का जो विषय है, श्रुति प्रमाण को तत्वावेदक प्रमाण कहते हैं और प्रत्यक्षादि प्रमाणों को व्यावहारिक प्रमाण कहते हैं। तो श्रुति से उत्पन्न हुए ज्ञान से प्रत्यक्षादि प्रमाणों का और उनके विषयों का बाध हो जाता है, मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। और श्रुति से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म विषयक ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक, तो जो ब्रह्मात्म एकत्व विषय है तत्त्वमसि वाक्य का, उसको बाधित करने वाला कोई भी दूसरा ज्ञान नहीं होता। ये चरम ज्ञान है, चरम कहते हैं अंतिम को, अहम ब्रह्मास्मि ये चरम वृत्ति है, चरम प्रमा है, अंतिम प्रमा है। वह सारे ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान से कल्पित द्वैत रूप विषय और द्वैतात्मक प्रमाण उनको कारण सहित अविद्या सहित बाधित कर देता है ये ज्ञान, और स्वयं भी बाधित हो जाता है, स्वयं अपने से ही बाधित होती है, निवृत्त हो जाती है वो वृत्ति। अपने परिणामी उपादान कारण मन को भी बाधित कर देती है, मनोनाश होता है ना, तत्व साक्षात्कार होते ही अविद्या निवृत्ति और मनोनाश। मनोनाश करने वाला कौन है, कौन सा ज्ञान है? अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्त्यात्मक ज्ञान। वो क्या कर रहा है? मन का नाश कर रहा है। वो अपना जिसका वो परिणाम है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार रूपावृत्ति, जिस मन का परिणाम है उसका भी नाश कर देती है। हाँ, और फिर वो बाधित होने के बाद स्वयं वृत्ति भी उसका परिणामी बाधित हुआ तो बाधित हो गई, निवृत्त हो गई, और निवृत्त होने के बाद जो शेष रह गया स्वयं प्रकाश ब्रह्म वो हमेशा रहेगा। फिर उसका आवरक कोई न होने से उसी रूप से हमेशा ज्ञानी स्थित रहेगा, वही ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। वो अबाधित स्वरूप में स्थित हुआ, वो नित्य स्वरूप में स्थित हुआ, वो एक है अद्वैत। वेदांत उसको बचाता है, बाकी सबको। इसलिए अध्यास भाष्य में ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार ने मोक्ष शास्त्र जो उपनिषदे हैं उसे भी कहा न कि अविद्यावद पुरुष विषयक ही है। अविद्यावद विषयक पुरुष का मतलब भ्रांत पुरुष को समझाने के लिए ही उपनिषद है। उपनिषद ब्रह्म को समझाती है क्या तुम ब्रह्म हो करके? जिसको ब्रह्म होते हुए भी जीव भाव की भ्रांति हो गई, अब्रह्मता की भ्रांति हुई, उसकी भ्रांति को निकालने के लिए उपनिषदे कहती हैं कि तुम ये संसारी जीव नहीं हो अपितु असंसारी ब्रह्म हो। और ये समझा करके फिर श्रुति स्वयं भी अलग हो जाती है। ये ज्ञान होने से पहले तक सब प्रमाण प्रमेय व्यवहार है, उसके बाद फिर यत्र त्वस्यात्मेवाभूत तत्केन कम्पश्येत् केन कम् विजानीयात्, वहां प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं होता, ये कहते हैं। तो इस चरम वृत्ति की उत्पत्ति तक ये सारा व्यवहार है, और उस चरम वृत्ति के साधन के रूप में निर्गुण की उपासना यहां पर बताई जा रही है। चरम वृत्ति उत्पन्न होने के बाद अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार अविद्या का निवर्तक, द्वैत मात्र का बाधक, मनोनाशक, उत्पन्न होने के बाद फिर निर्विशेष की उपासना करने की जरूरत नहीं है। ये साक्षात्कार उत्पन्न होने से पहले, साक्षात्कार में प्रतिबंधक जो विपरीत भावना है, हाँ, अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है? वेदांत श्रवण करने के बाद भी तो प्रमेय विषयक विपरीत भावना है। भावना शब्द का अर्थ होता है संस्कार। हमारी बुद्धि में हम ब्रह्म होते हुए भी अनादिकाल से असंख्य जन्मों से मैं कर्ता भोक्ता हूं, यही अनात्मा शरीरादि के साथ तादात्म्य करके कर्तापना भोक्तापना के संस्कार बहुत दृढ़ हुए हुए हैं। इन संस्कारों का नाम है विपरीत भावना। और सामान्य रूप से जिसके चित्त में जैसा संस्कार जिस विषय का है, वो संस्कार उसकी वृत्ति को उधर ही ले जाता है। तो अनात्मा शरीर आदि का ही मैं के रूप में संस्कार इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से होने से, हम यदि प्रयत्न नहीं करते हैं, बिना प्रयत्न के एक बार निर्विशेष ब्रह्म ही हम हैं, ऐसा तत्वमसी वाक्य से लक्षित होने पर भी हमारी अहम वृत्ति को इस निर्विशेष ब्रह्म में स्थित नहीं होने देता वह बलवान संस्कार, विपरीत संस्कार, उसे अशुभ संस्कार भी कहते हैं, विपरीत भावना, विपर्य, अशुभ संस्कार, ये पर्यावाचक शब्द हैं। और ये यदि बुद्धि में दृढ़ है तो साक्षात्कार ज्ञान की, क्या नाम, अज्ञान का बाधक साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसलिए इन संस्कारों को मिटाना जरूरी है। और संस्कारों को मिटाने के लिए, विपरीत संस्कारों को मिटाने के लिए उनके विरोधी संस्कार बुद्धि में लाने पड़ेंगे। तो विरोधी संस्कार लाने हैं तो अनात्मा देहादि के मैं के रूप में संस्कार के विरोधी संस्कार होंगे निर्विशेष ब्रह्म के आत्मरूप से संस्कार। और निर्विशेष ब्रह्म के आत्मरूप से संस्कार कब बढ़ेंगे, पुष्ट कब होंगे? तो ये होता है कि आप निर्विशेष ब्रह्म के आकार की मन में वृत्ति होगी मैं के रूप में, तो वह वृत्ति जिसके चित्त में बनी उसके चित्त में अपने विषय का संस्कार डाल करके समाप्त होती है। उत्पन्न हुए तो नष्ट होगी, लेकिन नष्ट होने से पहले वो संस्कार बुद्धि में डालती है। तो जैसे ही निर्विशेष ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा बुद्धि वृत्ति का आवर्तन होता जाएगा तो ब्रह्म का आत्मरूप से बुद्धि में संस्कार पहले बार में ही पड़ेगा। और उस पहले बार में ब्रह्म का जो आत्मरूप से संस्कार पड़ा है उसे परिपुष्ट करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए, ये बार 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 जो आवर्तन होगा वह आवर्तन वृत्ति का बल, उसे बल देगा, पुष्ट करने में सहायक बनेगा शुभ संस्कार को। शुभ संस्कार है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार। और वो संस्कार पुष्ट होगा, और जब अशुभ संस्कारों से बलवान होगा तो अशुभ संस्कार परास्त हो जाएंगे, तब जाकर के एक परमात्मक वृत्ति होगी। यह अभी तो निर्विशेष की उपासना है, का मतलब आप अपने प्रयत्न से निर्विशेष ब्रह्म को मैं के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, आवर्तन कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, वही निर्विशेष ब्रह्म की उपासना है। और ये करते करते संस्कार बलवान होने के बाद फिर एक अहम ब्रह्मास्मि ऐसी प्रमा होगी, वो प्रमाण से होगी, श्रुत तत्वमसी वाक्य से होगी। और वह प्रमा अज्ञान को, आभानापादक आवरण को कहो, निवृत्त करेगी, मनोनाश कर देगी और फिर जाने से पहले आपके चित्त में, जिसके चित्त में ये अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ, उसके चित्त में एक ऐसा वीर्य यानी सामर्थ्य दे करके जाएगी कि फिर दोबारा ये संसार दिखने पर भी कभी सत्य प्रतीत नहीं होगा। इसलिए केनोपनिषद में कहा जाता है वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम, तो विद्या अमृतम वीर्यम विन्दते, अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कारात्मिका वृत्ति है विद्या, और उससे अमृत वीर्य की प्राप्ति होती है, अविनाशी सामर्थ्य मिलता है कि एक बार संसार बाधित हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए ज्ञानी के बुद्धि में वो बाधित ही रहता है, कभी ज्ञानी पर हावी नहीं होगा। फिर जैसे ज्ञान होने से पहले तक हावी हो सकता है कभी भी अनात्मा का संस्कार पुष्ट होने पर, लेकिन ज्ञान हो गया बाधित हो गया तो ज्ञान एक ऐसा सामर्थ्य देगा कि कभी वो बाधित हमेशा बाधित ही रहेगा, बाधित संसार उस पर प्रभाव नहीं डालेगा, उससे बाधित संसार से वो प्रभावित नहीं होगा, ऐसा सामर्थ्य मिलेगा। इसके लिए वो सामर्थ्य प्रदान करने वाला साक्षात्कार के साधन के रूप में यहां पर बताई जा रही है निर्विशेष की उपासना। वो उपासना क्या करती है, शुभ संस्कारों को पुष्ट करती है, आपकी बुद्धि में शुभ संस्कार बढ़ाती है, उससे अशुभ संस्कार निवृत्त होंगे। वो अशुभ संस्कार साक्षात्कार में बाधक है, वो जब तक रहेंगे तब तक होंगे होगा ही नहीं साक्षात्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।